Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Aaj ke is ank mein desh videsh ki aarthik surkhiyon ke saath saath शेयर बाजार के हलचल पर एक नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमरीश जी।
और पहले एक नजर डालेंगे आज की आर्थिक सुर्खियों पर। अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग।
Thanks, Ambrish. Yes, friends, let's begin with the headlines as usual. Benchmark domestic equity indices end with modest losses. Sensex drops over 280 points. Nifty closes around 25,450. Quad members launch critical minerals initiative to secure and diversify critical mineral supplies. And global crude oil prices edge up over 1%, Brent crude trading at $67.93 per barrel.
घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 280 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 25,450 पर बंद हुआ। क्वाड सदस्य देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पहल की शुरुआत की और कच्चे तेल के मूल्यों में 1% से अधिक की तेजी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $67.93 प्रति बैरल पर दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेतों के बीच बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक आज शुरुआती बढ़त के बाद मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 83,410 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक टूटकर 25,453 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में 0.3% से अधिक की गिरावट आई। बीएसई में व्यापक बाजार सूचकांक भी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप सूचकांक लगभग 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक भी 0.2% नीचे आ गया।
The benchmark domestic equity indices today paired early gains and ended with modest losses amid mixed global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 288 points to close at 83,410. The National Stock Exchange Nifty 50 declined 88 points to settle at 25,453. Both the indices dropped over 0.3% each. The broader market indices at the BSE also closed in negative territory. The mid-cap index slipped almost 0.2% and small-cap index edged 0.2% down.
सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों में गिरावट दिखाई दी। गिरावट दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 2.1%, लार्सन एंड टूब्रो का शेयर लगभग 1.9% गिरे और बजाज फाइनेंस का शेयर लगभग 1.5% गिरा। बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर 3.7% से अधिक, एशियन पेंट्स का शेयर 2.1% से अधिक और अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 1.6% तक बढ़ा।
In sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended down. In the top laggards, realty dipped over 1.3%, financial services slipped over 0.9%, and industrials fell more than 0.8%. Among the top gainers, metals surged over 1.4%, consumer durables climbed more than 1.2% and commodities increased 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,205 companies declined, shares of 1,809 companies advanced, while shares of 157 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 65 companies hit their 52-week high, while 36 hit their 52-week low. So, Deepshika, our report says that domestic equity indices today paired early gains and ended with modest losses amid mixed global cues. What are these mixed global cues?
Thank you, Lalima. You know, last 4 days, we've had very good session and there was a lot of optimism which was building around the global economy. The conflict, there was a conflict in Middle East which stands resolved. So that crisis was overcome. And the market was waiting for cues from the US economy. And also, I think the most important cue which now markets are waiting for is what happens to the trade deal, what happens to the reciprocal tariffs on July 9. Mm-hmm. So I think when we are talking about amid mixed global cues, these are the factors, I think, which are weighing on the market. Mm-hmm. There's nervousness in the Indian market also, which was seen today. There was obviously some bit of profit booking. But also, I think now investors, especially institutional investors and also retailers, I think everyone is waiting, keeping fingers crossed on what happens to the India-US trade deal.
Yes, there have been sticking points coming to the deal, which especially the exports of dairy products. We try to, we are trying to protect our agricultural people, the farmers, and produce, and they want to sell their own genetically modified soya and corn, which we are trying to resist. Do you think there can be a platform where we can agree? And because a lot is hedging on these on this deal.
Definitely. And, you know, if you heard President Trump's statement yesterday, he's indicated that a deal is coming. It's happening. So I think there is keenness on both sides, and which is very important in any trade negotiation, to have a trade deal. And trade deals are always give and take. Mm-hmm. You have to give something and you will get something.
Right.
So some concessions have to be made somewhere, but India has drawn its red lines. So there are a few areas where concessions cannot be made. One sector is farm sector. You know, we have subsistence farming. Our farmers have very small land holdings.
Right.
We don't have large corporates running a farm.
Mm.
Similarly, dairy. So in terms of dairy, there are two issues. Again, you know, you have small dairy farmers, not very organized sector. And also there are religious concerns because of the feed which is given to the cattle in US.
Right.
The other is, you know, on the GM. You know, in India, there is a concern about GM, and we do not, there is a committee which decides and so on and so forth. So we'll have to see now the reports, which we are getting is it could be a deal done in tranches. So you could have some early deal with some issues tackled,
mm-hmm.
and then maybe in phases a deal could be sort of done where more trickier, more complex issues can be taken up.
तो आपको क्या लगता है क्योंकि अब अगले दो चार दिनों के अंदर ही डील के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई फाइनल खबर आएगी तो भारतीय जो बाजार है वो उसको कैसे लेगा अगर अनफेवरेबल नहीं भी होता है तो आपको लगता है कि बावजूद किसी भी तरह का डील हो बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा जो मोर और लेस हम पिछले दो हफ्तों से देख रहे हैं
देखिए बाजार की जो उम्मीद है और खासकर हमारे जो औद्योगिक जगत की उम्मीद है कि हमारे जो कुछ एक क्षेत्र हैं देखिए यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ा निर्यात का बाजार है तो हमारे लिए हमारे निर्यातकों के लिए वो बाजार किस हद तक खुलता है हमारे ऊपर टैरिफ्स जो हैं वो कितना कम होते हैं तो अब लेकिन यूएस ने 10% का एक बेसलाइन टैरिफ लगा दिया है और सारा नेगोसिएशन उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर होगा हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे जो पीयर्स हैं उसके साथ हम किस स्थिति में रहते हैं। तो कुछ एक क्षेत्र जहां हमारे अग्रेसिव इंटरेस्ट हैं, आप टेक्सटाइल्स ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए, बहुत सारे हमारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारा एग्रेसिव इंटरेस्ट है, वहां हमें क्या मिलेगा इस पर बहुत हद तक बाजार का मूवमेंट जो है वो निर्धारित रहेगा। पर हाँ, डील हो रही है नहीं हो रही है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो एक 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ 9 जुलाई के बाद लागू होगा, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है
जी।
Does it? I mean, as you're putting it, that this is a, there's a lot of give and take and tug of war going on over some issues like agriculture. Does it also put a pressure on the India-European Union Free Trade Agreement? Pressure on that to happen, because we assume that that there'll be a 12th round of negotiations in Brussels on the 7th of July. Does it put pressure on that as well?
So, if you see, there has been keenness in most of the blocs to have a trade deal with India. If you remember, all the European commissioners had come to India, and it has really gained pace after that.
Mm-hmm.
EU is very keen to have a trade deal with India, especially because of the way geopolitics is sort of playing out in the world, and now with tariffs being imposed by the US. So hopefully, it is expected by end of the year, something concrete would materialize with EU as well.
दीपशिखा जी, हम देखें देश के अंदर अच्छी खबरें लगातार आ रही हैं, जैसे जीएसटी कलेक्शन की बात करें, ऑल टाइम हाई गया, एनपीएस बैंकों के कम हो रहे हैं, तो ऐसे में बाजार को जिस तरह का पॉजिटिव रुख अपनाना चाहिए, वैसा हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
अमरीश जी, अगर आप देखें तो हालांकि जीएसटी कलेक्शंस जो है वो बढ़ा हुआ था, लेकिन जो लेटेस्ट नंबर आया, थोड़ा सा जून में जो है सॉफ्टनिंग हुई है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल माहौल जिस तरह का बन गया था कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, फिर उसके अलावा टैरिफ को लेकर के, तो वो एक थोड़ा सा ओवरहैंग है मार्केट के ऊपर, और डिमांड के ऊपर भी वो ओवरहैंग रहा, इसीलिए परफॉर्मेंस जो है ऑटो क्षेत्र का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो कुछ एक क्षेत्रों में ये सॉफ्टनेस जो है वो दिखाई दी जून के महीने में, लेकिन ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आगे मॉनसून अच्छा है तो डिमांड भी मजबूत होगी आगे जाकर, और इकॉनमी जो है जिस तरह के प्रोजेक्शंस हैं 6.7, 6.8, S&P ने तो अपना प्रोजेक्शन बढ़ाया, तो ग्रोथ जो है वो मजबूत रहेगी इस साल भी
जी। और चलते हैं, रुपए का हाल भी जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर होकर 85.70 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 96.94 पर चल रहा था। और चलते हैं, एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। जापान का निकेई सूचकांक 0.5% से अधिक गिरा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में भी लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.6% से अधिक गिरा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% से अधिक की तेजी के साथ 4010 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान बढ़त चल रही थी। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 1.2%, जर्मनी के डेक्स में लगभग 0.4% और लंदन के फुटसी में 0.1% की तेजी दिखाई दे रही थी। दीपशिखा जी, आप क्या कहेंगी, एशिया और यूरोप के बाजारों का मिला जुला रुख ही दोनों जगह हमें दिखाई दिया, इसके पूरे इनके मूवमेंट को आप कैसे एनालाइज करेंगे?
देखिए, जो वैश्विक बाजार भी है वो अमेरिका में क्या होता है 9 जुलाई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि जैसा भारत के लिए 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ प्रस्तावित है, और देशों के लिए अलग अलग रेट हैं, कुछ के लिए बहुत ज्यादा भी है. उसके अलावा यूएस का चाइना के साथ क्या डील होता है, ट्रेड डील की बातचीत हो रही है ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, वो क्या डील किस तरह का होता है, तो ये सारे क्यूज हैं. तो एशियाई बाजार में भी और यूरोपीय बाजार में भी इसको लेकर के थोड़ी नर्वसनेस तो है बनी हुई.
All right, look at the US markets now. US stocks ended mixed on Tuesday as investors weighed a host of US economic data and comments from Federal Reserve Chair Jerome Powell to assess the timing of any interest rate cuts. The Nasdaq Composite fell over 0.8%, S&P 500 dipped 0.1%, while Dow Jones Industrial Average rose 0.9%. Earlier, Fed Chair Jerome Powell indicated that President Donald Trump's tariffs delayed potential interest rate cuts this year. Speaking at the European Central Bank Forum on Central Banking, Powell noted increased inflation forecasts due to the tariffs prompted the Fed to adopt a wait-and-see approach. On the economic front, U.S. job openings increased in May, but a decline in hiring pointed to a cooling labor market. The slowdown comes amid uncertainty over the Trump administration's tariffs on imports, with a 90-day pause on higher reciprocal duties drawing to an end. How do you analyze the U.S. economy, Deepshikha? Also, is the dollar suffering because it is being said that the world's reserve currency is down over 10%? Is that true?
Lalima, if you saw the first quarter data on GDP, which came out from US, US economy contracted and after a few months. Mm-hmm. So I think for the Fed chair, it's definitely a complex task ahead with President, pressurizing him for a cut in interest rates. But with tariff, there is a fear that inflation may surface, rise again. Mm-hmm. So I think definitely the concerns around the U.S. economy and especially what the U.S. government does on the tariffs is something that is going to play out. And that is something which is going to be an overhang on the markets as such.
All right.
Aur chalte hain America mein ho rahi क्वाड सम्मेलन के बारे में भी खबर जान लेते हैं. अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड सदस्यों ने समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है. उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया. वाशिंगटन में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के संयुक्त वक्तव्य में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल की शुरुआत की बात कही गई है. ये पहल इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने के लिए एक सामूहिक प्रयास है. नेताओं ने साझा एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाने और सामूहिक रसद शक्तियों का लाभ उठाने के लिए इस साल पहले क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करने की भी योजना बनाई है. नेताओं ने मुंबई में क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप को लॉन्च करने की भी योजना बनाई है. बयान में आगे कहा गया है कि क्वाड एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है. दीपशिका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और संयुक्त वक्तव्य में उनका उल्लेख है. खासतौर से अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स की पहल की शुरुआत की गई है, इसके क्या मायने हैं और इसका किस तरह का असर हमें दिखाई देगा?
अमरीश जी, क्वाड का जो ग्रुपिंग है वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के वजह से ही एक ये ग्रुपिंग बना था कि एक बहुत बड़ा फोर्स चीन के तरफ से जो जिस तरह की चुनौतियां आ रही थी सामने, उसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली टैकल किया जाए. क्रिटिकल मिनरल्स अगर हम देखें भारत के सामने भी और भी देशों के सामने, चीन ने अप्रैल में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर. तो दुनिया भर के देशों और खासतौर से भारत में भी जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जहां तक ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन ईवीज, इनके उत्पादन को लेकर के बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर का काफी कंसर्न उन्होंने जाहिर किया है। सरकार की तरफ से भी अगर आप देखें कि बहुत सारे वक्तव्य आए हैं कि हम रेयर अर्थ्स जो हैं यहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में भी हम आगे इसमें कितने और कदम उठा सकते हैं, माइनिंग को लेकर के इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके बहुत डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये जो क्वाड ग्रुपिंग है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने सप्लाई के लिए एक सप्लायर पर निर्भर हैं ये देश, तो ये सप्लाई चेन जो है इसे कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए,
लेकिन
और खास तौर से जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, ये एक बहुत जरूरी जो है मिनरल्स के तरह आजकल हर क्षेत्र में इनपुट की बतौर यूज होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में जरूरत होती है, तो किस तरह से इसके सोर्सिंग को हम आपस में इसका सोर्सिंग जो है कर सकते हैं, कौन से नए जो देश हैं जहां से ये सोर्सिंग डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, तो इसको लेकर के चिंतन जो क्वाड में हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक समस्या विश्व के सामने खड़ी हुई है, तो इसका समाधान जो है ये चार देश जो हैं किस तरह से अपने सप्लाईज को एड्रेस करेंगे ये कंसर्न को, तो ये बहुत ही अहम एक वक्तव्य है मेरे हिसाब से।
आपने जैसे रेयर अर्थ मटेरियल की बात की, तो जिस तरह से चाइना की मोनोपोली है, जिसकी जो बार्गेनिंग पावर भी उसके पास है, उसको हम किस तरह से क्वाड के देश काउंटर कर पाएंगे?
देखिए, एक जो इनिशिएटिव है जो क्वाड का है उसमें सप्लाई चेन्स जो है उनको कैसे डाइवर्सिफाई करें, तो बहुत सारे और देश हैं जहां पर कि जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहां पर माइंस हैं, वहां पर माइनिंग की जा सकती है, तो आपस में इसका सप्लाई जो है उसको किस तरह से उसको सुधारा जाए, ये माइनिंग में अगर कोई सहयोग की जरूरत है, भारत में भी इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा जो ऑक्शंस हुए थे उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं आया था
जी।
तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, तो इसी तरह का सहयोग जो है ऐसी उम्मीद की जाती है ये जो इनिशिएटिव है
जी।
कि हमारे जो उद्योग जगत हैं उन वो अचानक से उनके साथ ऐसा उनको शॉक ना हो कि ये सप्लाई जो है अचानक रातों रात बंद कर दिया गया है, तो ये निर्भरता खत्म की जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए सोर्सेज को।
It's interesting, the times have changed, Deepshika. Few years ago, the country which had oil was considered to be rich. Now, the countries which will have critical minerals or rare earth metals, they are, or magnets as we call them, they would be considered the future of the world, you know. So that way, I think times have really changed and we are trying to adapt to it. It is also being said that the Prime Minister's visit going to South African nations, because Africa is rich with critical minerals, that may also come up in the discussions there, and we have always tried to I would say that the West has exploited Africa, but remember in the last G20 summit, the first day itself of the summit, we had adopted South Africa as part of the G20 group, which is very rare. So we have almost been very friendly to the South African nations. We have a story of Prime Minister's visit. Let me go through that. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 5-nation visit to Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil and Namibia this morning. In the first leg, Mr. Modi will reach Ghana this evening. In his departure statement, Prime Minister Modi emphasized that Ghana is a valued partner in the Global South and plays a significant role in the African Union and the economic community of West African states. He is looking forward to exchanges aimed at opening up new windows of cooperation in the areas of investment, energy, health, security, capacity building and development partnership. Talking exclusively to Akashwani, India's High Commissioner to Ghana, Manish Gupta, emphasized the important role that India continues to play in the economic reset agenda of the West African nation.
Ghana's economy is now on the rebound. Once the country gets out of the economic restructuring, you will have a slew of foreign investments, and that offers a new opportunities also to the Indian companies to invest over here. And especially in the context of the Ghana's economic reset agenda, which offers ample opportunities in the fields of agriculture, healthcare, manufacturing sector, and also the IT sector.
और चलते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुसूचित जाति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज करना जारी रखा है। सकल और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात कई दशकों के निचले स्तर क्रमशः 2.3% और 0.5% पर आ गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मजबूती पूंजी भंडार कई दशकों से फंसे हुए ऋणों के कम होने और मजबूत आय से समर्थन मिला है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बैंकों की कुल सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए एक वर्ष पहले के 2.8% से घटकर 31 मार्च तक कुल ऋणों का 2.3% हो गई हैं।
So Deepshika, quick comment on Prime Minister's visit to Africa and the NPA story.
Like you mentioned, you know, Global South for India remains a very, it's a key focus. And definitely, I think Prime Minister's visit sort of asserts this firmly. Also, if you look at Africa's mineral rich, so definitely we are trying to forge, trying to energize our ties, our relationship with the Global South further. Mm-hmm. And this trip is important from that perspective. Mm-hmm. As well. If you look at the NPAs, definitely banking sector's performance has been remarkable over the past few years. And there's been concerted effort to improve their balance sheet. And that effort is showing definitely.
Yes, right. All right, let's take a look at the prices. Oil prices now. Crude oil prices rose over 1% today as Iran suspended cooperation with the United Nations Nuclear Monitor, the International Atomic Energy Agency, IAEA. And markets weighed expectations of more supply from major producers next month. Brent crude was trading 1.2% up at $67.93 per barrel. And WTI crude was trading around 1.3% up at $66.28 per barrel when reports last came in. And over to gold prices. While in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading nearly flat at 97,660 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was trading almost 0.5% up at 1,07,250 rupees per kilogram a short while ago.
Or multi-commodity exchange mein antim samachar milne tak अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.17% बढ़कर 97,421 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य बिना किसी बदलाव के 1,05,994 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। दीपशिखा जी, सोने के मूल्यों में जिस तरह की स्थिति हमें दिखाई दे रही है, आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, सोना और चांदी दोनों प्रेशियस मेटल्स जो है, उन्होंने अगर आप पिछले कुछ वर्ष देखें तो बहुत ही रिमार्केबल गेन्स जो है दोनों कमोडिटीज ने किया है। लेकिन अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि गोल्ड में खासतौर से हो सकता है वृद्धि कि इसमें थोड़ी लगाम रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि हमने देखा मिडिल ईस्ट में अचानक से हो गया, तो अगर विश्व में परिस्थितियां ठीक रहती हैं तो ये कमोडिटी में थोड़ा सा ऐसा आशा की जा रही है कि लगाम लगेगा।
जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। दीपशिखा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अमरीश जी।
और फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंड विद मॉडेस्ट लॉसेस। सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 280 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस अराउंड 25,450। क्वाड मेंबर्स लॉन्च क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव टू सिक्योर एंड डाइवर्सिफाई क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एज अप ओवर 1%। ब्रेंट क्रूड trading at $67.93 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra.
और एक हम अपने श्रोताओं को हिंदी में भी हेडलाइंस बता देते हैं। घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 280 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 25,450 पर बंद हुआ। क्वाड सदस्य देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पहल की शुरुआत की और कच्चे तेल के मूल्यों में 1% से अधिक की तेजी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $67.93 प्रति बैरल पर दर्ज की गई।
On that note, it's time for us to bid adieu. Namaskar.